होना चाहिए, किंतु हम देखते हैं कि हमको ये क्यों नहीं समझते। अरे गोपियों की दासियों को जिस प्रकार से चिंता करते हैं, वहां की गलियों की जितनी चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, नंद बाबा के नौकर चाकरों की जितना चिंता करते हैं, हमें तो उस पर किसी कुछ नहीं। एकदम विरह में उनकी चिंता करते हैं, इसलिए कृष्ण सबसे उनकी चिंता करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और भी ऐसा तो बहुत जगह में वर्णन मिलता है जो उनके संस्कृत में चंद्र उन गोपियों का ध्यान करते हैं। सब ध्यान हो गए, हमारे माता पिता को जाकर के सांत्वना मिली। इस समय की बात है, नंद प्रिय वसुदेव जी ने कहा ये ब्रज जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रज में जाने से रोकने के लिए एक उपाय है, यदि इसको क्षत्रिय अभिमान हो जाए कि मैं क्षत्रिय हूं, तब से ये ब्रज में जाना अटक जाए। ये अपने को क्या समझता है,
वो
इसलिए इसका उपनयन कराना बहुत जरूरी है जल्दी। बस उनको बुलाया अपने गुरु जी को, गर्गाचार्य जी का, गुरु जी जल्दी से जल्दी कब दिन निकट है शुभ दिन, और अभी भी तुरंत इसको उपनयन कर दे जाए दोनों भाइयों का। शिक्षा के लिए कृष्ण और बलदेव जी चले, उनके हाथों में होली लटका दी गई, होली दे दी गई दोनों के, छांव बंद करके दंड लेकर के और चल पड़े भिक्षा के लिए। कृष्ण सोच रहे हैं याद आ गई, पहले से तो याद आ गई, वहां पर देवकी जी सोने के थाल में तरह तरह की रत्न राशि रखी है, यदि कृष्ण आएगा तो उसके झोली में मैं ये सब दे। वसुदेव जी रुपये पैसे गांठ भर करके बैठे हुए हैं, और अक्रूर जी की स्त्री है और कंस की मैया है, और सब जितने लोग हैं सब हैं, सब लोग सोच रहे हैं हमारे पास तो भिक्षा की, सब लोग भिक्षा की चीजें लेकर के बैठे हुए। कृष्ण जी सोचने लग गए, ओ हमारी भैया ने कहा था जब तुम्हारा उपनयन हम करेंगे तो तुम्हें जब तू शिक्षा के लिए हमारे पास में आएगा तो झोली भर करके हम तुमको एकदम भर, बस यही आ मैया तो देखने लगी, मैया कहीं नहीं दिखाई पड़ी। देवकी को तो कभी मैया नाम से संबोधन ही नहीं करते थे, रोहिणी जी को तो कर लेते थे बलदेव जी की मैया, किंतु उनको कभी भी यशोदा जी कहती थी ये सारे भाई हमारा बेटा वहां गया, हमसे तो मक्खन मिट्टी मांगता था, उसको तो मैया ही कहता नहीं है, तो उसका खाना भी नहीं पूरा। तो कृष्ण जी बस वही पूछा मैया ने खा खा देने के, कहाँ है मैया, ऐसे करते करते एकदम निकल गए, और उनके आंखों में भी तरंगता आत्मा में यशोदा मैया जी बस दिखाई पड़ने लग गई, और बस जोर जोर से चिल्ला करके अब रहा नहीं गया तो मैया चिल्ला। सब लोग देख करके सब लोग चिल्लाइए ये मैया में किस लेकर, मैया तो सामने खड़ी है, किंतु तो सब लोग नहीं समझते, किंतु रोहिणी जी समझ गई, बलदेव जी समझ गए, और सब जोर से वो खड़ी की खड़ी रह गई देने के लिए, और ये कृष्ण जी बस वहीं पर मैया मैया कहते हुए बस गिर गए, दांत लग गए, मूर्छित हो गए, शुद्ध बुद्ध नहीं रही मैया मैया कहते। अब तो सब लोग दौड़े उसको उठाया, बड़ी मुश्किल से अब वो उत्सव ही एकदम विरक्त कर, किंतु फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं आया, कौन जो कि बस दे तो एक दिन में फिर तो ठीक हो जाएगा, अभी तभी स्मरण आ रहा है, अभी कल का भी आया है, किंतु जब हम उपनयन उपनयन हो जाएगा तो फिर हम समोह संभाल। कृष्ण जी को फिर उठाया पिटाया और फिर ऐसे लाड प्यार में ले गए जो कि भूल जाए, किंतु वो भूलेंगे कर
तो यहाँ पर किसका ध्यान किया? कृष्णचंद्र जी ने। क्यों दुखित हो गए? अपनी मैया ब्रजवासियों का ध्यान कर रहे। इसलिए ब्रजवासी लोग जो हैं, और उनसे भी इस मैया को छोड़ करके, मैया के अंक में सोए रहते हैं, छोड़ करके गोपियों से मिलने के लिए वहां पर चले जाते हैं। तो वो गोपियां कितनी बड़ी हैं, इसलिए कहते हैं जो यशोदा मैया से भी कृष्ण को अधिक स्नेह करने वाली जो गोपियां, उनकी महिमा हम क्या वर्णन करें, उनका ये ध्यान जो करते हैं। इसलिए कहते हैं उनका आकार अर्थात कृष्ण की अंतरात्मा जब हो जाए, कृष्ण भी अपनी अंतरात्मा के गोपियों का ध्यान, स्मरण, चिंतन और आराधना। इसलिए हमारे गुरु जी ने एक श्लोक लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है। लोगों ने कहा यहाँ पर ठाकुर जी सफेद हैं, ठाकुर जी तो काले होते हैं और राधा जी होती हैं सफेद। तो राधा जी सफेद होती हैं और कृष्ण काले होते हैं? जहाँ समस्त सौंदर्य जहाँ पर के एकत्रित हुआ है, वो तो श्रीमती राधिका जी का कहा जाता है, जो उनका सोने के समान, कोई कहते छिन्न स्वर्ण, जैसे कि हल्दी होती है, हल्दी कट्टी और उसको तोड़ दिया जाए उसमें अत्यंत सुंदर हो रहता है, वैसा ही राधा जी का रंग था। किंतु हम समझते हैं कि वो रंग भी नहीं लगेगा, जगत का कोई उपमा ही नहीं है। तुलसीदास जी राम की उपमा या सीता जी के सौंदर्य की उपमा का वर्णन करते हैं, कहते हैं ये सब उपमाएं यहाँ पर सब बेकार और झूठी हो गई, कोई उपमा ही नहीं। तो राधा जी का सौंदर्य की कोई उपमा हो सकती है? तो कृष्ण जी काले हैं कैसे? अलकतरे जैसे काले हैं, गोलतार जैसे काले हैं, लेकिन कैसे काले हैं, कैसे काले हैं? और राधा जी यदि गोरी हैं तो कैसी गोरी हैं? कोई भी उपमा जगत में नहीं है उनकी देने के लिए, कृष्ण के लिए न तो। इसलिए कृष्ण जैसा हम काला समझते हैं ऐसे काले नहीं, और राधा जी जैसा हम गोरी समझते हैं ऐसी गोरी नहीं। कोई भी उपमा नहीं, कमल का जैसा बतलाया जाता है कमल नहीं, कमल क्या उनके नैनों की उपमा हो सकता है? ये सब नहीं, कोई भी उपमा उनके लिए नहीं। यदि प्रत्यक्ष वक्त उनको देखा जाए ना, तो ये सब चीजें बेकार हैं। तो कृष्णचंद्र जी के लिए और राधा जी के लिए उपकार है, राधा चिंता निवेश है ना जब तक हम थी विलोपिता श्री कृष्ण चरण बंदे राधा लिंगित विग्रह। कृष्णचंद्र जी चिंता करते हैं, गुरु जी का कहना है या हमारे रूप गोस्वामी जी का कहना है, श्रीमद भागवत भले ही कहते हैं कि कृष्ण के विरह में गोपियां बड़ी खुशी हो गई थी, और इसका वर्णन किया गया है। और सब संप्रदाय वाले यही कहते हैं कि कृष्ण की चिंता करती हैं गोपियां जैसे भक्त लोग करते हैं। किंतु रूप गोस्वामी का और हमारे गुरु जी का विचार यह है कि कृष्ण राधा जी की चिंता करें, राधा चिंता निवेशना, राधा जी से अलग होने पर कृष्ण राधा जी की चिंता करते 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 उनका ही रूप जैसा बन गया, उनका ही अंग की कांति के जैसे इनकी कांति हो गई, अर्थात ये भी गुरु बन गए। इसलिए यह यहाँ पर इंद्री कला में यह भाव वृंदावन के इंद्री कला में कृष्ण राधा जी के विरह में तड़प रहे हैं, गोपियां निकट आ गई तो उनको छोड़ करके तो चल दिए, राधा जी वहां पर गिर पड़ी और गृह व्यवस्था देकर के जब जा रहे हैं तो चल नहीं सके, थक गए और जा ही नहीं सके उनको छोड़कर, बस पास ही गए घनी झाड़ी शून्य, बस इंद्री कला के शून्य में बस नहीं पड़ गए, विषाद हरी अथक विषाद करने लगे और राधा जी की चिंता करते, वो उधर गिर पड़ी है और ये उनकी चिंता करते 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 ऐसे भाव विभोर हो गए कि मैं हूं ये भाव दूर हो गया और मैं श्रीमती राधिका हूं ये भाव आया और उनका भाव बढ़। हमारे गुरु जी ने यहाँ पर महाप्रभु जी की कृपा से ये रूप यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मार्बल गोरा का रूप में राधा जी की मूर्ति ऐसा दिखाया जाता है, मार्बल पत्थर से सफेद, किंतु सफेद मार्बल ही राधा जी का अंग की कांति है। राधा जी वैसे ही बोली थी जैसे कि यह सफेद मार्बल है, एक सफेद जड़ मार्बल क्या राधा जी की रूप की तुलना कर सकता है? और काला पत्थर क्या कृष्ण के रूप से तुलना करेगा? नहीं, एक खुड़ाका मिलता जुलता हुआ है, ऐसे ही दोनों के मित्र हैं और इन्हीं को प्रत्येक चलते हैं, इसलिए ऐसा किया। तो वो विष्णु पितामह जी कितने भाव में गहरे जा करके ये सब विचार कर रहे हैं। ये कृष्ण ही वो गोपियां उनकी अनु प्रकृति अर्थात उनकी अंतरात्मा के भी स्मरण युक्त बन गई। तो भक्तों के लक्ष्मी के भी जो असाध्य दुर्लभ जो है ऐसे मान वाली गोपियां बन गई। महा आराधन कृष्णचंद्र जी उनकी आराधना करने लगे, शरण करने लगे। श्री कृष्णचंद्र जी ब्रज सुंदरियों की अद्भुत प्रेम महिमा को देखकर ठगे से रह गए और सोचने लगे, विचार करने लगे, उनकी चिंता करने लगे। इसलिए उनको प्रकृति कहा जाता है, इसलिए ब्रज सुंदरियों की सबसे अधिक परम और कर्ष बतलाया और उनसे इनका प्रीति है, इसलिए कृष्ण की इतनी चरणों की महिमा है। ब्रह्मा के आराध्य कृष्ण हैं और गोपियों के आराध्य कृष्ण, दोनों में कौन बड़ा हुआ? गोपियों के आराध्य। ये यशोदा जी के और नंद जी के जो दुलाल हैं, पुत्र जो कृष्ण हैं, और राधिका जी के गोपियों के प्राणनाथ आराधानाथ गोपीनाथ मदन मोहन जो हैं, तो दोनों में कौन किसका वैशिष्ट है? एक ही व्यक्ति होने पर भी जब आराधानाथ होते हैं, गोपी बल्लभ होते हैं, उनका प्रेम माधुर्य बहुत ऊपर चला जाता है। इस कारण से गोपीनाथ ऐसे जो गोपीनाथ हैं जो गोपियों के संग से इतने उत्कर्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसे गोपीनाथ जी का चरण कमल हमारे हृदय में उदित हो, ये कौन कहता है? विष्णु पितामह जी। इस प्रकार से विष्णु जी बड़े आनंद के साथ में अपना सौभाग्य वर्णन करते हैं, जो हो आज उन्हीं के चरण कमल हम दर्शन कर रहे हैं, आज वही गोपीनाथ जी हमारे ऊपर में गोपियों को जो प्राण प्रियतम है अथवा गोपियों की जो आराधना करने वाले हैं, ध्यान करने वाले कृष्ण जो हैं, वो आज हमारे ऊपर में कृपा करें, ये युक्ति युक्ति है। कौन कहता है? नारद जी। ये बहुत ही सुंदर है, इनके लिए यह सफर है। नान हुतासनादिनेश्वर समर्पितो यस्य गृहीत पाणिः पिबन्ति या सक्षतामृतं मुहुः ब्रजस्त्रिय सन्मोहजदाशया नूनं व्रतस्नानहुतासनादिनेश्वर। अहो हे सखी, परस्पर को कह रही परस्पर अपने संवयस्क स्त्रियों को हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं कृष्ण को जाते हुए देख करके, सखिया ये ब्रजांगनाएं थी गृहीत पाणी भी कृष्ण ने जिन सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि का पानी ग्रहण किया क्या था ना विवाह शादी की, उन्होंने पूर्व जन्म में न जाने कैसे व्रत किए थे। कौन? रुक्मिणी, सत्यभामा, ज्ञानमती, कालिंदी, मित्रवृंदा इत्यादि, अथवा वो रोहिणी इत्यादि 16,000 जो वो स्त्रियां थी जो कि वहां से आई थी नरकासुर के यहाँ, उसमें रोहिणी की प्रमुख थी। रोहिणी की बलदेव जी की मैया का भी नाम है और एक उनका भी नाम है। तो वो रोहिणी प्रवृत्ति जो है पूर्व जन्म में कौन से व्रत किए? कठोर व्रत। कौन कौन से तीर्थों में उन्होंने स्नान किया था और कैसे दान इत्यादि उन्होंने दिए थे न जाने कब से, यह जो ईश्वर है उनके द्वारा अर्पित होकर के उनके पानी को ग्रहण किया, उनके हाथों को पानी में विवाह के समय में जो ग्रहण किया जाता है उनसे विवाह और उनकी दासी के रूप में ये सब उनकी सब समय सेवा करती हैं और क्या करती हैं? सत्य अधरामृतम हो कृष्ण के अमृत का पान करती, उनकी चरणों की सेवा करती हैं, अमृत का पान करती। ऐसा सौभाग्य आज तक किसी को नहीं हुआ, किसी को भी जगत में नहीं हुआ। ये पूर्व जन्म में कौन सी तपस्या, कौन सी क्या चीज, किंतु कोई सकी हो हम तो समझते हैं की ब्रज की स्त्रियां जो थी इनसे बहुत ऊंची हैं, लाखों कोटि गज। उनका जाने उन लोगों ने क्या किया था जिनको गृहित पाणी भी कृष्ण ने अपने हस्त कमलों से उनके हाथ पकड़ करके और नाच इत्यादि किया और भी बहुत ऊंचा भाव लिया। ये कौन का राघो उन लोगों को इसलिए धन्य की विवाह के समय में उनका पान ग्रहण और ये गोपियां अराक इत्यादि के समय में या सब समय जिनके हस्त कमल कृष्ण ही उनके हाथों को पकड़ते हैं और स्पर्श करते हैं उनके अंगों का स्पर्श करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए और उसका स्मरण होने मात्र से ही पिबंति जा सब खधराम मृतम हो प्रजस्त्रिय सर्म हो। अरे उनका चिंतन करने से उस अधर्मृत का चिंतन करने से अधर्मृत मैंने क्या अधर्म में जो अमृतता का वाक्य मधुर बोली हाथ परिहास इत्यादि जो परस्पर है ये भी अधर्मृत ही है और प्रसाद को भी कहते हैं वजन करके जो रख दिया और भी अधर्मृत के अर्थ हैं। तो ये सब चीजें गोपियां स्मरण मात्र से ही बस मूर्छित होकर के गिर पड़ती थी। एक तो उनका अधर्मृत पान करके उनके बातों को सुन करके हाथ परिहास और ये सब चीजों को सुन करके और वो बड़े आनंदित होती थी। कौन वहां द्वारका की महिषी और ये इनका स्मरण मात्र से मूर्छित होकर के गिर पड़ती थी। तो कौन से हुआ ये बंसी से वेश मनाती थी कौन गोपियां। समय इनके अस्त्र पर विराजित हैं हम लोगों के पाने योग्य ये चीजें और ये सब समय लकड़ी होकर के सुखी वो भी चित्र युक्त होकर के बस चोरी कर लिया। राधा जी ने चोरी कर लिया पहले तो हुआ खेल रहे थे कुछ पार और उसमें पर लग गया जैसे मैं सत्ता होता है ना कोई सत्ता कभी खेले नहीं है जो जानते हैं मैं तो जानते हैं भाई। जैसे युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा ये राज्य मैं दाव पर रख देता हूँ जब ये हमने चलाया हमारी जीत हो गई तो ये राज्य में ले लूंगा और मैं तो तुम्हारा राज्य में ले लूंगा या तुम हमारा राज्य ले। बस सपनी ने वो गोटी चलाई और जीत हो गई कभी हमारी जीत हो गई हमारी जीत हो गई उन लोगों ने कह दिया और जीत हुई थी युधिष्ठिर को। अब सब लोग के कहने के अनुसार में कहा जैसे सब लोग करेंगे जीत हो गई उसकी तरह ठीक है जीत हुई हमारी किंतु आज झगड़ा किया नहीं भाई ये सभी लोग एक तरफ ये कार्य राज्य ले लिया ऐसे स्त्री ले लिया सब कुछ ले लिया। अब यहाँ पर हुआ है जैसे या तो ये कृष्ण बंसी हार जाएंगे और हम जब ये जीत जाएंगे तो बंसी ले लेंगे और यदि कृष्ण यदि जीत गए तो उसके लिए भी कोई कृष्ण ने कहा हम ये चीज
लेंगे
और क्या लेंगे उसके लिए पर वो सब गोपनीय चीजें वो व्यक्त करने लायक कदे की गोपियों ने क्या किया एक झिल्ली की लड़की को बुला लिया यदि कृष्ण जीत जाएंगे तो उसका हम दे देंगे उसके बदले ठीक। वो आकर के खड़ी वो मुस्कुरा समझ नहीं गई वो बेचारी किंतु बाई चांस हो गई जीत गोपियों की राधा जी जीत बस कृष्ण से बंसी जोर करके उसको सब गोपियों ने मिल लिया और मिल करके जोर जबरदस्ती उनको पकड़ करके हाँ कृष्ण हारने पर भी नहीं देना चाहते चुराना चाहते हैं लेना चाहते हैं किंतु गोपियां आज जबरदस्ती करके उनके हाथों से खेल के लिए थैंक यू तेरा कृष्ण एकदम उनका एकदम बड़े दुखी हो गए गोपियों ने दे दिया कृष्ण मनाने लगे भाई जैसे तैसे ये दिन उधर के बाद में कृष्ण भाई आप जैसे भी हो उसके बदले में तुम और लोग कुछ ले लो किंतु ये दे कभी हमने लिया ही नहीं तो कौन लिया हमारे पास तो नहीं आते तो देख लो देखा जी ने उन्होंने ललिता जी को दे दिया ललिता को विशाखा को विशाखा ने रंग दे दी देते देते लेकिन कहाँ वो बंसी पहुंच गई कृष्ण इधर खोज रहे कहीं कहीं नहीं मिली। तो विशाखा जी ने कहा मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी बतलाओ आप करेंगे तो कर मैं जानती हूँ चित्रा जी के पास में उनके चरणों में जाकर के गिरो तो वो दे तो कृष्ण वहां पर गए उनके चरणों में गिरने के लिए। उसने कहा कि हमारे चरणों में गिरने नहीं है, हमारे पास नहीं है, मीसाखा जी के पास, तुम के यहाँ जाओ। तो उनके चरणों में गिरने गए। फिर वो कहते हैं ये नहीं, वो चंपक लता के पास, तो उनके पास, मैंने सब गोपियों के चरणों में उनको गिराया। जब फिर भी नहीं मिले तब फिर अंत में पिता, तो फिर राजा चल रही इस विचार ललिता जी करी, अरे यही तो देखते हैं कि तुम गोप को बुद्धि तुम्हारी है, अरे ये सुखी लकड़ी में जिसमें भी छेद है बेकार की 10-12 छेद है, और उस लकड़ी के लिए तुम इतना चिंता कर रहे, इतना प्रेम यदि दूसरों से करते तो तुम क्या नहीं हो जाता, लकड़ी के प्रति तुम्हारा इतना स्नेह हो रही है, खाना पीना भूल गए और ये सब हो गया, दिन रात इसके चरणों में गिर रहे, उसके चरणों में गिर रहे, उसके चरणों, हम कह देंगे थे उस सबरी के पास में है, उस सबरी मैंने पुलिंद करने, तो उसके भी चरणों में तुम गिरोगे, इस बंसी के लिए आता हूँ क्या, उसी के साथ में ऐसा वो व्यवहार छिपा करके देने दिया, और फिर तुम उसके लिए विशास करनी है, विशास मैंने गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी भावना करते हैं, और बंसी भी धारण गोपियों के लिए करते हैं, यदि ये बात नहीं होती तो ये बंसी द्वारका में और मथुरा में क्यों नहीं धारण किया, वही तो कृष्ण थे, इसलिए गोपियों को प्रसन्न करने के लिए बंसी धारण किया, न कि अपने स्वभाव से किया, उनका स्वभाव गोपियों को देखते ही बस बंसी किया। तो वो कह रही हैं इसके लिए ब्रजप्रिय उनकी चिंता करते ही बस वो एकदम प्रेम में मधुर में एकदम होकर के मुखित होकर के गिर पड़ती है, इसलिए गोपियों की महिमा में क्या कौन कौन करता है, नारद जी का ये ब्रज की उनकी स्त्रियां भी भोली भाली सी हैं, पतिव्रता हैं, और फिर भी कृष्ण के इस रूप का वो वर्णन कर, नारद जी कहते कहते एकदम प्रेम में विभोर हो गए, ठलने ठलने लग गए, गोप कुमार गाते एवं पदम स भगवान परिलब्धवान मन समाप्तिकम प्रफुल का सुभार स्मृतंगमा द्विस्वागदै सदम वर्णन रोग जीवान नित्यं विचित्रम विदिधा अवस्थान। वो कुमार कहते हैं ब्राह्मण, ये नारद जी इस प्रकार से ब्रज की माधुरी, गोपियों की माधुरी, गोपियों की उत्कर्षता, कृष्ण का उनके संग में ऐसे जो लाल लीला विलास में वर्णन करते 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 प्रेम में एकदम मुक्त हो छप गए, और हमें लेकर के अपने अंक में, और आंखों से आंखों की झड़ी लग गई, सुलभ होने लगा, कांपने लगे प्रेम से, और प्रेम प्रेम सागर में उनकी तरंग मालाओं में बहने लगे, गोपी प्रमोत्सव, फिर अपनी जीवा को काटे, अरे मेरी जीवा तू एक ऐसी चीज का वर्णन कर रही है जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है, अर्थात गोपियों की तुम महिमा बतलाने के लिए चल पड़ी है, इस प्रकार से अपनी जीवा को भी काटने लग गए, और भाव में विवल होकर के एकदम थोड़ी देर के बाद में उद्धव जी ने उनको पकड़ लिया, और मैं तो भाई चुपचाप पास से देखता रहा उनके भावों, और उद्धव जी उठ करके और उनको उठाया, उठा करके उनको पंखे झले, कुछ स्मृति उनको आई, आने पर हमारी तरफ में ठीक देखी और देख करके हमारा मुख सुखा हुआ, इसलिए उद्धव ये सब तो वर्णन कर रहे हैं, मैं ऐसे प्रभु को कब प्रसन्न करूंगा, इसलिए ये बड़े दुखी और इनको सांत्वना देकर के फिर वो सुखता। मैंने जो कुछ भी वर्णन किया है वो उसको खूब गोपनीय रूप में रखना, उसको जहां तहां प्रकाश मत कर देना, इन सब तत्वों को जो कहा हमने, ब्रज की माधुरी, कृष्ण लीला की माधुरी और गोपियों की महिमा, ये जहां तहां जिसको तिसको मत बतलाना,
আমাদের গুজরাট বা আত্মনা তো খুব ভালো করে যাবে সব
ऐश्वर्य भाव प्रकट हो वहाँ पर तो इस बात को कभी कहना मत, अनाधिकारी से मत कहना। अनाधिकारी माने क्या? जिनको इस विषय में कुछ लोभ नहीं है उनको मत कहना। थोड़ा सा ये हो जाता है, प्रवचन में तो सभी लोग एक प्रकार के लोभ वाले तो लोग आते नहीं, वहाँ पर सब कहना नहीं चाहिए, ठीक है नहीं कहना चाहिए, किंतु यदि नहीं कहा जाएगा तो जगत से ये लोग भी विद्या हो जाएगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने जो महाराज का विचार या गोपियों के प्रेम की बातें जो श्रीमद् भागवत में कही है या व्यास ने जो लिखा है वो सर्वत्र नहीं होना चाहिए, तभी तो प्रकाश तो किया उस महासभा में जहाँ पर परीक्षित जी बैठे हुए थे, जहाँ 88,000 ऋषि लोग थे, गृहस्थ लोग थे, कहा तो। और जहाँ पर ये कह रहे हैं वहाँ पर भी सभी लोग बैठे हैं, परीक्षित महाराज जी बैठे हुए हैं, उनकी मैया बैठी है और सब लोग बैठे हुए हैं। इसमें ज्ञानी भी हैं, मुख्यवादी भी हैं, कर्मी भी हैं, सब प्रकार के। तो सभा थोड़ी सी श्रद्धा वाले वहाँ पर से जरूरी है, कुछ कौतूहल बस भी आकर तो उसमें बैठ गए हैं, तो जो कौतूहल वाले हैं इसको धारणा नहीं करें। और जो कर्मी ज्ञानी हैं उनको केवल सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग सकता है किंतु धारण नहीं करें। और जिनको थोड़ा सा लोभ है झट इस चीज को ग्रहण करें। तो अभी ये मना किया गया है कि कहीं भी जहाँ तहाँ जैसे तैसे लोगों के सामने इन चीजों को प्रकट मत करना, क्यों? कर्पूर की भांति वो चीज उड़ जाएगी। यदि स्वप्न में भगवान का दर्शन या भक्तों का दर्शन हो तो नहीं कहना चाहिए किसी को। अपना विशेष यदि कोई प्रिय गुरु इत्यादि है तो उनको कहे, और नहीं तो कहीं कभी कहना नहीं चाहिए, उसका फल खत्म हो। विशेष करके ऐसी बातें सब जहाँ तहाँ जैसी तैसी सभाओं में नहीं कही जानी चाहिए। अतः तदानीम वैकुंठे न मया से प्रकाशितम परम माधुर्य लोलित अत्र अवदम किया। इसीलिए मैंने वैकुंठ में तुमसे ये बातें मैं कहना चाहता था, किंतु वहां का रंग ढंग जो देखा इसलिए नहीं बताया। क्यों? वहां पर परम ऐश्वर्य प्रकाशित है और वहां पर गरुड़ इत्यादि और विश्वक्सेन और सब वहां पर थे। लक्ष्मी जी हैं, उनमें मर्यादा का भाव रखती हैं, इसलिए मर्यादा का तोड़ करके जो प्रेम और आगे है इसलिए वहां पर मैंने नहीं कहा। और वातावरण भी ऐसा नहीं था जिसमें कहा जाए, इसलिए तुमको इंगित मैंने मात्र वहां पर दी थी ये यहाँ पर वो भाव नहीं होगा, इसलिए तुम यहाँ से अयोध्या होते हुए ब्रज में जाओ, इसलिए मैंने कह दिया। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने वैकुंठ में भी तुमको यह रहस्य नहीं बतलाया था, अब तुम्हारी भाव माधुरी को देख करके, तुम्हारी जो भावना है उसको देख करके मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए द्वारकापुरी में भी यह नहीं बतलाना चाहिए, द्वारकापुरी वाले भी इसके योग्य नहीं हैं। इसलिए मैं यहाँ पर भी नहीं कहना चाहता था, किंतु यहाँ पर एकांत निर्जन मिल गया। कहाँ मिल गया निर्जन?
उद्धव
जी के घर में। यहाँ पर वो लोग कोई भी नहीं आ सकते और उद्धव के सामने कहने से कोई हानि नहीं, क्योंकि ये ब्रज में गए थे। ब्रज माधुरी के ये लोग ही हैं, कृष्णा जी के, इसलिए मैंने कह दिया, नहीं तो मैं ये बतलाता ही नहीं यहाँ पर। इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा को देख करके केवल और यहाँ पर निर्जन देखा, कोई भाव का विरोधी व्यक्ति यहाँ नहीं था। और उद्धव जी जो है, यद्यपि उनमें वो भाव नहीं है, किंतु उसको ये आदर करते हैं, इसलिए तुमको उनके सामने निर्जन घर में ये तुमको बतलाया, अन्यथा ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये बातें, ये सब जो ऐसी स्थिति में विशेष विशेष व्यक्ति के लिए ही ये संभव है, और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो जैसे दूध तो पोषक है ना, पोषक तत्व है, किंतु यदि सांप खा ले तो क्या हो जाएगा, विष बन जाएगा, और दूसरे आदमी खाएं तो उसके लिए पुष्टिकारक होगा, तो दूसरों के लिए ये विष बन जाएगा, उसका उल्टा समझ लेगा और अर्थातल में चला जाएगा। इसलिए तुमको यहाँ पर मैं कुछ कुछ बतलाया, पूरा नहीं बतलाया। स्वस्व उद्भवस्य त्यक्त एष कुत्राहम कृत्वाहम शपथम ब्रुवे दुस्साध्यम तत्पदम ह्यत्र तत्साधनमपि ब्रुवान्। देखो, मैं अपना और उद्भव जी का बार बार मैं शपथ ग्रहण करता हूँ, शपथ लेता हूँ। शपथ माने जानते हैं तो है? शपथ ग्रहण करता हूँ, क्या शपथ लेता हूँ, शपथ करके कह रहा हूँ, भाई द्वारका में रह करके इस गोलोक की प्राप्ति कभी भी संभव पर नहीं है, द्वारका में रह करके ऐसे ब्रज प्रेम को कोई यदि लाभ करना चाहे, हजार साधन करके भी, तो उसको नहीं होगा, ऐसा साधन ही नहीं है। और हम ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, इसलिए साधारण जागतिक वस्तुओं को, इसमें यदि हम मत हैं, तो द्वारकापुरी में जब नहीं हो रहा है तो यहां से होगा, और केवल वृंदावन के निकुंज वन में यदि दिन रात बैठ जाएं तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा भाई, वो वृंदावन निकुंज नहीं है। अशुद्धि के बाद में कुछ लोभ हो और अंततः आत्माराम आप्त काम हो जाए, तब ये सब होगा। बिना आत्मकाम हुए और बिना आत्मकाम हुए भाई ये नहीं होगा। संसार का जितना दुख क्लेश आता है इससे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं, और जगत का जितना भी वैभव आता है इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। इसके लिए दूसरों से हम मित्रता करेंगे अथवा शत्रुता करेंगे, इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं, ऐसा आपका काम अथवा आत्मा ये अन्नाभिलाषिता यदि रहेगी तो तब उसका हृदय प्लेटफॉर्म तैयार है इसके सुनने के लिए, और नहीं तो छोटी छोटी वस्तुओं में चित्त यदि चंचल हो जाता है, हृदय अशांत हो जाता है, तो ये सब भक्ति करने में। कहते हैं कि तुम उद्धव के घर में भी रहेगा तो तुमको तुम्हारा नहीं होगा, ये द्वारकापुरी उसकी हवा तो लगेगी। देखो वहां पर काम को मोहमाश्वर्य और ये अनर्थ है कि नहीं, द्वारकापुरी में नहीं है, वो तो बैकुंठ से भी ऊपर है ना, इसलिए इस सब का प्रश्न कभी वहां नहीं होगा।
तो समय ज्यादा लगे क्यों होगा नहीं,
हाँ
समय ज्यादा लग सकता है क्यों होगा क्यों नहीं,
नहीं होगा। ये तीन बार शपथ अपना और नारद जी का शपथ करके कह रहे हैं नहीं होगा भाई।
पहले तो बदलाया जो इष्ट देगा उसी का मंत्र उसी स्थान में सिद्ध होगा, लेकिन दूसरे जगह रहने पर समय ज्यादा लगेगा, तो ये समय क्यों कह रहे हैं रहने पर,
तो ये शपथ क्यों कर रहे हैं, मैंने होगा मैंने वही आभास ये भाव नहीं है। जहाँ पर द्वारका का भाव रहेगा वहाँ ब्रज का भाव नहीं रहेगा, ये तात्पर्य। द्वारका में ऐश्वर्य भाव है इसलिए भी नहीं। इसलिए दुसाध्यम सत्पदम ब्रज का भाव वहां पर नहीं आएगा। सत्साधनम अपिध्रम, यदि साधन भी करो तो भी नहीं होगा। किंतु उपदेशम हितमेकम एतम मत्तासु पुरुषोत्तमाख्यम क्षेत्रम तदवत्रापि विभात्य दूरे पूर्वम त्वया सिद्धूवि दृष्टम अपि। देखो इस विषय में हमारा हित उपदेश तुम सुनो, मैं तुम्हें हित उपदेश कर रहा हूँ। हित उपदेश मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए जो उपदेश कर रहा हूँ खूब सावधानी के साथ में सुनो। यदि ब्रज में तुम सखा के रूप में कृष्ण को पाना चाहते हो, यदि कोई ब्रज में कृष्ण को पुत्र के रूप में वात्सल्य करना चाहता है, यदि कोई प्रियतम के रूप में कृष्ण को पाना चाहता है, तो हमारा यह उपदेश तुम सुनो, ये उसके लिए कर रहे हैं एकांत। ऐसे ही गुरु और शिष्य हों और ऐसे ही कथा के द्वारा शिष्य का उपकार यदि करे तो खुद का कल्याण। अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में अर्पित कर दे और ऐसा थोड़ा सा लोभ हो और गुरु और शिष्य दोनों समझ जाती है भाव के लिए, तब तो भाई होगा। अभी तो साधारण रूप में हम लोग आलोचना कर रहे हैं, किंतु यदि संस्कार हो जाए इसमें से थोड़ा सा लोग उत्पन्न होकर तो उसका महाकल्याण साबित होगा। हितोपदेश सुनो, पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम आख्यम क्षेत्रम तत्रापि विभक्त दूरे। यह द्वारकापुरी के समीप ही में यहाँ पर पुरुषोत्तम धाम है। कहाँ की बात कर रहे हैं? बैकुंठ में। कहते हैं यहाँ पर जो बैकुंठ में जो द्वारकापुरी अभी देख रहे हो, जहाँ पर तुम बैठे हो, ये पास ही में कुछ दूर ही पुरी धाम है, जगन्नाथ क्षेत्र पुरुषोत्तम उसको कहते पुरुषोत्तम क्षेत्र। यहाँ से कितनी दूर है द्वारका से? यहाँ से करीब 1000 माइल से भी ऊपर है, और द्वारका से करीब करीब 1500 माइल से भी करीब करीब ऊपर होगा, ये भौतिक लोग। और वहाँ से कितना दूर है बैकुंठ में? बहुत निकट ही है, भाव की दूरी है वहाँ, फल की दूरी नहीं, भाव की दूरी है। इस वृंदावन में मथुरा में भी कोई दोनों की सीमा एक साथ में लगी है, दो अंगुल भी दूर नहीं है। दो अंगुल है उनकी और उनकी सीमा लगी हुई, किंतु भाव की बड़ी दूरी है। मथुरा में रह करके भी ब्रजेंद्र नंदन को नहीं पाया जा सकता, और मथुरा का भाव ना रख करके ब्रज का भाव यहीं पर हो मिल जाएंगे।
नाथ जी उनको भी कह देते तो मनीमन ब्रज के हाथ से ये साधन करना,
वही तो बतला रहे हैं भैया।
वही क्या कहा, पुरुषोत्तम में जाओ,
वही कह रहे हैं पुरुषोत्तम के भाव में जाओ। इस फुल व्यक्ति इसको नहीं समझते, चैतन्य महापुरुष पुरुषोत्तम में थे, कहाँ
वृंदावन में थे,
तो फिर क्यों कहता है? इसलिए ऐसा भाव है। और हम लोगों के लिए स्थान भी जरूरी है, हम लोग के लिए स्थान भी जरूरी है, भाव भी जरूरी है, दोनों जरूरी। जहाँ वो भाव आया तहाँ वो स्थान आ गया, जेखाने वैष्णव धाम सही खाने वृंदावन। तो कह रहे हैं कि थोड़ी दूर पर पुरुषोत्तम क्षेत्र है, गीता में भी पुरुषोत्तम की बात कही गई है, खर अखर और खरखर पुरुषोत्तम की बात। पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण, पुरुषों में उत्तम है, खर और अक्षर जो है वो कभी भी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है, वो खर और अक्षर वाले दोनों इसी में रह जाए। कहते हैं तुम जिसको पृथ्वी में दर्शन किया है, पहले वो गए थे ना पुरी में, पुरुषोत्तम जी गए, कृष्ण बलदेव और सुभद्रा का दर्शन किया, वहां पर ये तीनों कौन है, भाई और बहन के रूप में वहां पर बैठे हुए, और उनके साथ साथ में एक चक्र सुदर्शन भी है, ये चारों की विग्रह वहां पर प्रतिष्ठित, तो तुमने इसको पहले से देखा है, इनके लिए कह रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में। अब वहां पर भी ठीक ऐसे ही देखेगा जैसे वहां पर थे, यहां पर भी वैसे ही, वहां पर दारू ब्रह्म के रूप में थे और यहां पर दारू ब्रह्म के रूप में नहीं, यहां पर किस रूप में है, बस दोनों में यही अंतर। जैसे इसमें वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन विग्रह रूप में है, किंतु वहां पर विशुद्ध अप्राकृत सच्चिदानंदमय शरीर में कलेवर से तस्मिन् सुभद्रा बलराम संयुतम संग वै विनोदम पुरुषोत्तमो भजेत चक्रे च गोवर्धन बृंदकार कवि कालिंद जातीर्भूवि स्वयं जम। कहता है कि पुरुषोत्तम भगवान सुभद्रा और बलदेव के सहित वहां पर विनोद पूर्वक क्रियाएं करते हैं और जो वहां पर लीलाएं करते हैं वहां यहां पर भी वही लीलाएं करते हैं। वहां पर पुरुषोत्तम स्वयं गोवर्धन वृंदावन और जमुना के तट पर जो जो लीलाएं किए हैं वही लीलाएं सब यहां पर भी कर रहे हैं। वो अभी जाएगा तो देखेगा जो तीनों वहीं पर हैं और वो सब लीलाएं कर रहे हैं। क्या लीलाएं कर रहे हैं, जो लोकवत लीलाएं कर रहे हैं, जैसे कोई लोकवत लीला प्रभु कभी कभी एक तो जब किसी को पता नहीं लगा तो सपने में महाराज जी को बताया, भाई क्या करूं मेरे कपड़े चपड़े फट गए, तुम लोग बड़े चिंतित हो। वो कोई गा रही थी महिला और गीत गोविंद के पद और मैं चला गया, मुझे पता नहीं ये कब फट गया कपड़ा, कैसे क्या हुआ, यहाँ पर भी आकर के मैंने देखा कि हमारे कपड़े फटे। तो ऐसे लोकवत लीला कर, अभी आप जाएंगे तो देखेंगे मंदिर में ही दो घोड़े बने हुए हैं, एक लाल घोड़ा एक सफेद घोड़ा, और एक पर श्याम नाम का एक युवक बैठा है और दूसरे पर बलदेव बैठा है, बड़े अभी किशोर लड़के और सिपाहियों जैसे बेश में बैठे हुए हैं। तो पूछा गया भाई क्यों ऐसे यहाँ पर इसलिए कैसे बैठाया गया, तो बतलाया गया महाराज प्रताप रुद्र के पिताजी क्या नाम था,
पुरुषोत्तम
जाना, जब वो किशोर थे कुमार से अभी शादी नहीं हुई तो इनकी शादी के लिए बहुत जगह से लोग आए और दक्षिण से भी एक महाराजा आए जो इनसे बल में सेना में वैभव में इनसे भी बड़े थे, अपनी सेनाओं को साथ में लो और मैं खुद हम दोनों भाई जाएंगे, कोई चिंता मत करो और उसे हम परास्त कराएंगे। इसके बाद अब शीघ्र समय देख करके आप सब सेनाओं को साथ में लेकर के वहां से कूच किया। सैनिक आगे गए हैं, उन्होंने हमारा पूरा मट्ठा पी लिया और कहा कि महाराज आएंगे तो पैसा देंगे। हमारा सैनिक तो कोई आगे गया ही नहीं, तो गया कैसे थे, एक सांवले गोरा एक गोरा, उम्र कितनी होगी 15-16 वर्ष की होगी। अच्छा, उनका नाम कुछ बतलाया तो उन्होंने ये हाथ की अंगुली अंगूठी दे दी, इसको देखा महाराज ने, देखा उसको दिखाया जगन्नाथ। अरे ये तो मेरी स्त्री बना करके पहनाया था जगन्नाथ जी को, यह अंगूठी इसको कैसे आ गई। फिर जब चिट्ठी देखा उसमें लिखा है दस्तखत बलदेव और दस्तखत
बलराम सिंह जगन्नाथ
जगन्नाथ, ये प्रभु हमारे परिचय देने के लिए विश्वास दिलाने के लिए आगे हमसे गए सिंहासन, ये चार चीजों को ले आए और किसी को कुछ नहीं। यहाँ ले आकर के जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल को रख दिया, तो साक्षी गोपाल रखने पर क्या हुआ, जब भोग लगे तो जो कुछ लगे ये गोपाल ऐसे करते करते आगे लुढ़क जाए और दोनों हाथों से ले ले और ये देखते रह जाए। तो जब 4-5 दिन उपवास रहे तो ने राजा जी को स्वप्न दिया, महाराज इस बच्चे को तो हटाइए यहाँ से, ये गोपाल तो सभी कुछ खा लेता और हमारे पास में कुछ रहता नहीं, पूरा हड़प लेता है, तो अब कितना दिन उपवास रहेंगे। तो महाराज जी ने उसकी व्यवस्था की और पासी में साक्षी गोपाल 8-10 मील दूर नारियल का बगीचा, वहीं पर विशाल मंदिर करके विशाल जमींदारी कर दी और उनको वहां पर भोग लगा और उनको भंड गणेश को लेकर के जगन्नाथपुरी के मंदिर में पीछे की तरफ पश्चिम दरवाजे पर उनको रख दिया, पूरब में सिंह द्वार उसके ठीक पीछे उनको रख दिया भंड गणेश को। और राधाकांत जी को गंभीरा में रख दिया, चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर रहते थे, और लड़की को